परमात्मा की जो प्राप्ति है वास्तु के मान वो कठिन नहीं है। शास्त्र भी कह रहे कि कठिन नहीं है, महात्मा लोग भी कह रहे कठिन नहीं है। फिर एक प्रकार से हम लोगों को यह कठिन क्यों प्रतीत हो रही है? माने साधारण हम लोगों की दृष्टि में तो एक या कठिन है सब प्रत्यक्ष दिख रही है, और शास्त्र कह रहे कि बहुत सुगम महात्मा लोग है, बहुत सुगम और बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो सके है। तो यह बात है सुन करके समझ में नहीं आ रहा है कि शास्त्र किस तरह से यह बात कह रहा है। जैसे भगवान के नाम की महिमा बतलाई जाती है, सत्य महात्माओं के संघ की बड़ी महिमा बतलाई जाती है और तीर्थ संघ की महिमा बतलाई जाती है, किंतु जैसी महिमा सुनी जाती है ऐसी महिमा देखने के मन नहीं आती। तो ठीक है, ये नहीं आने को कारण मोह है, ज्ञान है। जैसे गुरु जी है जिसका नाम भगवान राम बुला नाग पांच के समय में, तो गुरु जी आ बोला कि यह बात सुनी गई थी किसी राम से साक्षात परमात्मा है, किंतु जैसे इनको प्रभाव इनकी बात सुनी थी ऐसी देहन नहीं आती। क्योंकि जब साता करके बांधे गए तो छुटाना तो माया तो ज्ञान होगा मोह होगा, उस मोह होने के कारण से फिर वो आप लोग ब्रह्मा जी के पास में गया, फिर एक प्रकार से शिव जी के पास में गया, फिर वो बोला तेरे मोह दूर तू उठेगा कालखंड के पास है वहां तेरे दूर उसी है। तो माया बन बहुत भटकाई आंकर के बीच के मुंह जो है कालखंड जी के पास में आया तो वो मोह नाश हो। यदि कहो कि ब्रह्मा और शिव ऐसे ऐसे महापुरुष थे उनको छोड़कर कालखंड के पास में आया, बोले बात यह है कि एक तो समझो कि आपने कागज प्रश्न जैसे पक्षी में भी कागज जाती सबसे आधुनिक, तो बोले जो पक्षी है सब पक्षियों की भाषा पक्षी ठीक समझती, दूसरा उन्हें भटकाओ इसलिए कि थोड़ा दिन इन्हें भटकना सी, तो इस तरह से मेरी माया भटकाओ बने ईश्वर की जो माया है जिसकी मैंने भटकायो, तो आपने मोह माया तो भटका रही। अब जो ख्याल करो तो ये कि तीन साल की बात आई महिमा की, गंगा जी की बड़ी महिमा, गंगा जी के संग की दर्शन की और स्नान की सब महिमा है। गंगा जी के लिए जो रोने जाओ घर से है तो गंगा जी के लिए रोने जाओ तो पापा वो नाश है, एक एक पद पद है तो एक एक जग के समान लाभ है। और गंगा जी का शब्द उच्चारण कर गंगे 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 तो उससे तेरे पाप नाश हुए, और फिर दूसरा से पाप नाश हुए तो बाणी से लोग नाम उच्चारण से गंगा को नाम उच्चारण से पाप नाश, आंकड़ से दर्शन करने से पाप नाश, फिर गंगा जी में स्नान की फिर बात ही क्या है? किंतु यह बात सुनकर ही कि देखने में नहीं आती सुनने में नहीं आती क्या बात है। तो बात यही है कि अपना विश्वास नहीं होने के कारण से अपना पूर्ण लाभ कर रहे। इसी प्रकार से नाम जप की बड़ी महिमा शास्त्र नाम है कि एक चंडाल पुरुष भी इतना पाप नहीं कर सके जिसका नाम के जप से नाश हो जाए, और बड़े बड़े पापी है उनका भी उद्धार होने नाम जप के कारण से। तो इसी बात दिखा रहा है सुमरी पावन सुत पावन नाम सुमरी पावन सुत हनुमान जी भगवान के नाम को सुनते हो, जिसके प्रभाव से श्री राम को अपने बस में कर रखा था, अनुकूल बना लिया। हनुमान जी तो भक्त थे किंतु नीच पापी, उनको भी उद्धार उजाड़ कितना ही है, भारी पापी बोले इसको, उनको भी उजाड़ है। अपर अजामिल गज गणिकाऊ, हरि नाम प्रभाऊ। जो अगामी गज है, गणिका है, भगवान के नाम के स्मरण के प्रभाव से ये सब मुक्त हो गए। तुलसी जी बड़ी महिमा लगी, आगे मैं ये कह दिया, कवंका लगी नाम है बड़ाई, राम न सकही नाम गुने गाई। नाम की महिमा तुलसीदास जी कहते हैं, मैं कहां तक हूं। स्वयं राम भी अपने नाम के जब महिमा स्वयं नहीं बतला सकते, किंतु ऐसी महिमा देखने में नहीं आती कि अमुक भाई संयोग की लोन लाख नाम जपता है, अमुक भाई 50,000 नाम रोज जपता है, वो इतनी माला फेरता है, वो इतनी माला फेरता है, अमुक दुआई इतनी माला फेरती है, अमुक भाई इतनी माला फेरता है, तो देखने में ये नहीं आता। तो कारण क्या है? कारण यही है कि आपने श्रद्धा प्रेम की कमी है। श्रद्धा प्रेम यदि नहीं हो तो लाभ नाम का जप करने से जो लाभ नहीं हो सके वो एक नाम के जप से हो जाए। अब जो लाभ नाम में कितना समय लगे, हरेक में क्या समय लगे, तो ऐसे वो कौन सा नाम कि नाम है, चाहे कोई भी नाम हो, निराकार को पास हो तो उसके लिए ओम, साकार को उपास के लिए हो तो उसके लिए राम, और भी बहुत सब भगवान का नाम है। तो इस प्रकार से कोई भी एक नाम को आपने समझो कि जब, तो बोलो किस तरह से वो, और कि नाम को जो जप करे तो मैं नाम के जप ने मैं साधन में अमृत से भी बढ़ करके समझ लेने में ऐसा भाव बढ़े, और समझो कि विश्वास पूर्वक जब है कि अनुको यो प्रभाव है, इस नाम जब को यह महिमा है, ये इसको फल है, ये गुण है इसके विषय में, और खूब तपे न समझ करके कि नाम है, नाम से अलग नहीं है, भगवान को नाम से भगवान याद आ जाए तो भगवान को नाम और नाम एक ही चीज है। अब निष्काम भाव से जप है, गुप्त रूप से जप है, किसी को प्रकाश नहीं करे, और प्रेम के मां मुग्ध होकर के जप है, विश्वास पूर्वक जप है, और ध्यान से जप है, मन लगा करके जप है, तो एक ही नाम को समझो कि लाख नाम के समान पड़ जाओ तो कोई अत्युक्ति नहीं है। एक ही भगवान जब मिलेंगे तो एक ही नाम से मिलेंगे, अंत में तो एक ही नाम सब भगवान मिलते हैं। नाम की महिमा समझो कि बाली ने भी बदला लिए, जन मन मुनि यात्रा ने क जिससे भगवान के लिए मेरे लोग जन्म जन्म के मां यत्न करते हैं तब भगवान मिलते हैं, और मरने के समय के बीच के मां अंत के समय में राम ऐसा कहकर के यहां से जो जाता है वो लौट करके नहीं आता। और इसी प्रकार से एक ही नाम के प्रभाव से थी समझो तारक मंत्र समझ करके शिव जी काशी के मां सबको सुनाते हैं, मुक्ति देते हैं। जासु नाम बल शंकर काशी, एत सबहि समगति अविनाशी। जिसके नाम के बल के ऊपर काशी के मां शिव जी सम भाव सबको अविनाशी गति देते, ऐसा नाम भगवान के नाम की यह महिमा है। जिसके नाम की यह महिमा है वही स्वयं भगवान आज हमारे सामने विराजमान हो रहे हैं, तो ऐसा कौन मूल होगा कि प्रकार से थी जो आपने तलब तल को काट करके उसके स्थान में बंगूर का वृक्ष लगा हुआ, ये कैसा हुआ कि मम लोचन गो चार सो ही बहुजी की प्रभु ऐसा बने ऐसे प्रभु ऐसे, और प्रभु के जो शब्द आगे पीछे आ रहे हैं पाठ से अर्थ एक ही है, चाहे आगा हो चाहे पछा हो। तो कहते हैं कि बाली कहे श्री रामचंद्र जी को किसके कारण में हे राम वही आज आप मेरे संग विराजमान हो रहे, मैं ये मौका उका दू तो क्या इस प्रकार की झांकी फिर बनाने से मेरे प्रयत्न से थोड़ी बन सके। तो प्रभु अब तो एक प्रकार से मैं जिक्की जोनी के मां जाकर के जन्म लेनू, मैं जोनी जन्म कर्म बसता राम पद अनुराग, जिस जोनी में जाकर जन्म तो आपके चरणों में मेरा प्रेम है, बस मैं यही चाहता हूं। एक प्रकार से आपने बाली का भाव बदल गया तो भाव प्रधान है, तो भाव की कमी होने के कारण से नाम जब फल पूर्ण नहीं पा रहे, भाव पूर्ण होने की बाली को देखो भाव कैसे उत्तर नाम को, तो जब बाली करे अपने भाव कैसे उत्पन्न, तो ऐसे भाव होकर के नाम को जब किया जाए तो बिल्कुल महत्व है। इसी प्रकार से थी गंगा जी में भाव का जी को गंगा जी को सुना होना महीना था रोज के लिए मान तो गुलाब नहीं है, ठीक है गंगा जी के नाम उच्चारण से गंगा जी के दर्शन से जो लाभ हो सके वो लाभ होता नहीं हो, तो अपने मन में विश्वास नहीं है श्रद्धा नहीं है इस वास्ते। यही बात जो सत्संग की महिमा गाई जगह कल आप लोगों को सत्संग की महिमा सुनाई गई थी, उस सत्संग की तो महिमा वही है किंतु अपना श्रद्धा और प्रेम और विश्वास की कमी के कारण से थी उससे आप वंचित रहा। भगवान की अपना तो सब पर बड़ी भारी दया है, इतना दया की कुछ सीमा नहीं, किंतु वह दया ने न मानने के काम, न समझने के काम से थी, एक प्रकार से अपना संसार में भटकता फिरा। तो इसी प्रकार से थी भगवान की प्राप्ति की विषय गमा है। भगवान की प्राप्ति बहुत सुगम है और भगवान की प्राप्ति बहुत ही शीघ्र हो सके, यह बात अपने शास्त्रों से बतला रहे। अब वो भी चाहे पापी से भी पापी क्यों नहीं हो, उसको उद्धार बहुत शीघ्र हो सके। पापी है और उद्धार बहुत शीघ्र हो सके, इसके लिए स्वयं भगवान गीता में कहते हैं कि पीछे शुद्धाचारो भजते नाम भवती धर्मात्मा शांति निगच्छति कौन ते प्रतिजानी ही नैमे भक्त प्रायश्चित। गीता अध्याय 9 श्लोक 30-31 भगवान कहते अर्जुन को कि अर्जुन अतिशय दुराचारी पुरुष भी क्यों न हो, किंतु मेरा अनंत भक्त है और अनंत भाव से बचने वाला है, ऐसा है तो उसको तुम साधु ही समझो। क्यों साधु समझो? कि वो शीघ्र सो धर्मात्मा होने वाला है, धर्मात्मा होना ही साधु है, क्योंकि सम्मत अच्छे प्रकार से उसने निश्चय कर लिया अपने मन के बीच में। वो मेरे में अपना अच्छे प्रकार से निश्चय वाला है कि भगवान से बढ़कर कोई चीज नहीं, भगवान के भजन से बढ़कर कोई साधन नहीं, भगवान से बढ़कर संसार में कोई, इस बात को निश्चय वाला है। इसके प्रभाव से वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाएगा और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे प्रति प्रतिज्ञा देके कहता हूं कि मेरे भक्त का कभी पतन हो ही नहीं सकता, यानी होता ही। तो इन शब्दों पर हम लोगों को विश्वास था। भगवान तो कहते हैं ना एक प्रकार से साफ शब्दों में गीता में भगवान का वचन है, किंतु विश्वास होना चाहिए। तो भगवान की प्राप्ति बहुत शीघ्र हो सके, फिर इस कलयुग के बीच के वहां और भी शीघ्र हो सके। और इस कलयुग में हम लोगों का जन्म हुआ है तो हम लोगों के लिए और भी सुगम। कलयुग समयुग आनन ये जो नर कर विश्वास, गुणगन विमल कलयुग के समान कोई युग नहीं है। यदि कोई विश्वास करे तो भगवान का गुण गान से बिना परिश्रम जो है संसार सागर से पार उतर जाता है। भगवान का जो विमल गुण है, विशुद्ध जो गुण है उनके गान से है। इसी प्रकार से थी विष्णु पुराण के छठे अंश की दूसरे अध्याय के बीच के वहां वेद व्याजी ऋषियों के लिए यह बात कही है। क्या बात? कि कलयुग ऐसा बहुत उत्तम है, कलयुग गुणों की खैर है, किंतु ईश्वर की भक्ति करने से उसका शीघ्र करने वाला का उद्धार हो जाता है, यह उसमें विशेषता है। कलयुग अवगुणों की खैर होते हुए भी उनके वहां विशेषता है कि भगवान का गुणगान करने से, ईश्वर की भक्ति करने से उसका जल्दी से उद्धार हो जाए। और भी बात कही कि सज्जू के वहां 10 वर्ष साधन करने से जो काम की सिद्धि होती है वो कलयुग के वहां 1 ही दिन के वहां हो जाए, 10 वर्ष और 1 दिन। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि बात जो शास्त्र में जिसकी ठीक है, सही है, भगवान की प्राप्ति सुगम है, शीघ्र हो सकती है। और हम लोग किसी अंश में चाहते भी हैं, फिर हम लोगों को दिन के होता है नारायण नारायण नारायण, रुपया कमाने में, रुपया रोजगार करने में जो परिश्रम है, इतना भी परिश्रम समझे कि भगवान के प्राप्ति के साधन के मन है, यदि कहो कि अब आप समझ में नहीं आते, समझ में नहीं आती तो थोड़ा गौर करके समझो कि रुपयों के लिए आप जब कोशिश करते हो तो उस काम को मन लगा करके करते हो, तो क्या जैसे समझो अलोटोलो में करते हो, बोले जब ये आशा हो जाती है कि इस काम के वहां 10,000 मिलेगा, 2,000 मिलेगा, 5,000 मिलेगा, तो खूब मन लगा कर करते हैं। आप समझा करते हो तब भी मन लगा कर करते हो क्या? समझाते हैं अलो टलो में कर, तो उस अलो टलो का सफल होना चाहिए। गायत्री का आप जप करते हो, उस जप करने के समय के बीच के माँ जप का जो अर्थ है, गायत्री के माँ भगवान की समझो कि स्तुति है, ध्यान है, प्रार्थना है, तीन चीज है, उसकी तरफ भी कभी ध्यान रखते हो, उसके अर्थ की तरफ भी कभी गौर करते हो, बोलो अर्थ तो समझते जितना समझते हो, बोले उतना भी नहीं करते। अच्छा और कुछ नहीं, उस गायत्री के अर्थ में तीन बात है कि भगवान की प्रार्थना है, स्तुति है, ध्यान है, तीन में एक करते हो भगवान का ध्यान करते हो, जब करते हो बोले ध्यान नहीं करते। तो गायत्री का जो 24 अक्षर है उस अक्षरों को देख देख कर मानसिक जब तो करते हो, बोले ये भी नहीं करते, किंतु आपकी इस तरफ दृष्टि जाती है कि भाई गायत्री का जप करने से अमुक आदमी जो है सो खूब जप किया तो गायत्री में प्रकट हो गई, अमुक आदमी जप किया समझो कि तो वो भगवान के धाम को चले गया, ब्रह्म लोक को चले गया, अमुक आदमी एक तपस्वी ने खूब जप किया और वो एक प्रकार से इक्ष्वाकु राजा को आपका जप का फल दे दिया, तो राजा इक्ष्वाकु का भी उद्धार हो गया, दूसरा अपना फल दे दिया, इससे भी यदि शांति पर कथा आती है तो फल की तरफ तो ध्यान जाता है। तो आप वृक्ष तो बोएंगे और क्या उसका फल खाना तो कहां से मिलेगा फल? आप प्रथम तो समझो कि खेत के माँ बीज नहीं बोते हो, और बीज बोते हो तो उसको सींचते नहीं हो, और सींचते हो तो प्रतीक्षा नहीं करते हो, तो क्या मिला आपको? आपका जो विचार है वो तो बंदरों के जैसा है। कितने बंदर गंगा के किनारे एक जंगल था, एक बगीचा, एक धनी आदमी का, तो वो बगीचे की खूब रक्षा करते थे, उसे आम लगा करते थे, और रुखारे लोग चाचा रहते थे, तो बंदर लोग कभी ये भटके हुए चले जाते तो ये सो लाठी से मार करके बंदरों को भजाते। एक दिन से बंदर इकट्ठे होकर के विचार करने लगे कि रोज अपना लाठ ला पड़े है तो जंगल में अपने एक बगीचे लगा लो, फिर आम खाओ। तो भाग को फूट ठीक है, तो वहां जंगल के वहां गंगा किनारे जमीन का क्या ठिकाना था, तो एक प्रकार से थी वहां गंगा किनारे समतल भूमि देखी किनारे के ऊपर, तो वहां ले जाकर के आम की गुठलियां लगाती बोली, और फिर बोला पानी जाकर सींचो, तो सब बंदर धुआं भर पानी लाओ गिरे, पानी लाओ गिरे। अब एक दिन एक प्रकार से पानी गिरे, दूसरे दिन फिर बोला पानी गिरो, एक बंदर ने कहा कि अभी घास पैदा नहीं हुआ। अरे बोला नहीं है तो देखो तो सही, बूटे खोद करके के, तो बूटे खोद करके देखो तो अब उसके सुबह भी नहीं निकला, अरे मैंने आपने तो तोड़ के खा गया जो कुछ, एक प्रकार से बूटी फोड़ करके उसके मन से बड़ा होता वो खा गया। तो हम लोग तो इस प्रकार से चाहते हैं कि आज ही तो हम लगा दे, आज ही पड़ा आज ही खा गए। ये भगवती भी से की खेती तो ऐसे भी हो सके, किंतु एक प्रकार से थी करना चाहिए मन लगा करके, विश्वास पूर्वक श्रद्धा पूर्वक तो करनी चाहिए ना। मंत्र की सिद्धि भी बिना श्रद्धा के नहीं होती, शास्त्र में सारा स्वरूप एक प्रकार से आवे कि अमुक ने बाल वास्त्र चलाओ तो हवा चल पड़ी, वो अग्नि वास्त्र चलाओ तो आग बरसने लगी, आज कितने अस्त्र चलाओ न तो आग बरसती है न कोई जल बरसता है, कुछ भी नहीं होता। तो उस मंत्रों में विश्वास है, मंत्र की सिद्धि विश्वास होती। इसी प्रकार से भगवान धीरे धीरे कहते हैं कि मेरी प्राप्ति विश्वास होती, श्रद्धा होती, श्रद्धा की कमी के कारण से ये सब बात होती है। तो अपना जो साधन है वो तेज नहीं है, आपको कैसा मालूम पड़ा कि आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, इससे मालूम पड़ा। यदि साधन तेज होता तो भगवान की प्राप्ति हो जाती। तो क्या कमी है? प्रथम तो क्या कमी है, आप मन लगा के नहीं करते। वो भी आदमी जैसे रुपये में मन लगा के परिश्रम करता है रुपया रोजगार करने का, और कामिनी आदमी जैसे कामिनी के साथ मन लगा के भोग करता है, इतना भी मन यदि भगवान के मां कर्जी में लग जाओ तो बड़ा पार है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिनी दाम, तिनी रघुनाथ निरंतर प्रिय पुरुष को जो नारी प्यारी है और लोभ को जो रुपया प्यारा है, हे रघुनाथ जी हे श्री राम आप इसी प्रकार मुझको प्रिय लगे निरंतर। तो आप ख्याल करके देखो, कामी पुरुष असली के साथ में सहवास करे भोग करता है, उस वक्त में उसको जो सुख मिले और उसका मन उसमें जिस प्रकार से प्रवेश हो जाता है, लगा रहता है, ऐसा मन आप गीता का पाठ करते हो उसमें गीता में लगता है क्या? बोला नहीं लगता। तो फिर गीता से आप उस परम लाभ की परमानंद की प्राप्ति की आकांक्षा आप करते हो तो कैसे होगी? आप ही अपने पर विचार करके देखो। उसको संसारिक सुख क्षण मात्र में मिलता है, फिर आपको क्षण मात्र के वहां भगवान मिलते हैं। कहां तो एक निंदनीय सुख है और कहां परमात्मा की प्राप्ति का सुख है, जो लाख गुणा के करोड़ गुणा कहें तो भी एक प्रकार से वो बात शोभा नहीं पाती, इसकी सीमा है ही नहीं। ये तो सुख है, सो जाती इसकी दूसरी है, घृणित सुख है और वो असली सुख है, और वो नित्य सुख और अपार सुख है। तो एक प्रकार से आपको इतने समय नहीं लगे जैसे मनुष्य अपने विषय भोग की दृष्टि असली में रमण करता है, इस प्रकार से जो मनुष्य भगवान के मां रमण करे तो इतना समय जैसे नहीं लगे। भगवान का जो साकार स्वरूप ऊंचा निराकार, निराकार के मां रमना कैसा? जैसे जंत सुखोंतरा में तथा अंतर ज्योति है से योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मभूत हो गच्छति, निराकार गीता की पांचवें अध्याय को चौबीस के छिलो इसको भाव जो है ब्रह्मभूत पुरुष जो ब्रह्म के स्वरूप के बीच में जय की स्थिति है, ब्रह्म के स्वरूप में जो की एकदम तन्मय होकर स्थिति है, एक ही भाव से स्थिति है, ब्रह्म कोई आत्मा मानने वाला है, जैसे अज्ञानी आदमी जो कोई आत्मा माने शरीर ही मैं हूँ, इस प्रकार से ब्रह्म के स्वरूप में जिसकी आत्मबुद्धि होनी है कि ब्रह्म मेरा स्वरूप है, ऐसा पुरुष और उस ब्रह्म के मन रमण करता है। रमण यानी रमण क्या है कि ब्रह्म के स्वरूप का जो मन है ब्रह्म के मन रमण है, ब्रह्म के स्वरूप का ही आपने निरंतर रमण करता है और उससे आनंद का अनुभव करता है, जो अंत सुख अंत माने ब्रह्म अंत माने आत्मा ब्रह्म के माने सुख अनुभव करने वाला है। अंत ज्योति ब्रह्म ही जहां ज्योति है, माने ब्रह्म आनंद स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। इस प्रकार से ब्रह्म के स्वरूप को अनुभव करे कि ब्रह्म सुख ज्ञान स्वरूप है, चिन्मय है, आनंद स्वरूप है, बोध स्वरूप है। इस प्रकार से ब्रह्म के स्वरूप को अनुभव करना है।